हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। कृपया इन आध्यात्मिक शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। शब्दों का अर्थ देखिए। यज्ञशिष्टः अर्थात यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, यानी वो भोजन जो पहले यज्ञ में अर्पित किया जा चुका है। और अशिनः मना खाने वाले, संत भक्त का, यानी ऐसे भक्त जो केवल वही भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं जो कि पहले भगवान को या यज्ञ में अर्पित किया जा चुका है। और उनका क्या होता है, मुच्यन्ते, वो छुटकारा पा देते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। किससे, सर्व किल विषय, सर्व मना सभी तरह की, किल विषय मतलब पापों से। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि देखो, पहले भगवान ने कहा ना स्तेन, कि अगर आप चोर, अगर आप है ना भगवान को, देवताओं के दिए हुए खाद्य पदार्थ को देवताओं को फिर से अर्पित नहीं करोगे तो क्या हुआ, ते दत्ता न प्रदाय यो भुंगते स्तेन एव, फिर तो आप चोर हो जाओगे। लेकिन अगर आप चोर होने से बचना चाहते हो, यदि आप चोर नहीं बनना चाहते हो और यदि आप अपराधों से मुक्त होना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। तरीका बताया भगवान ने कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, फिर जो अपराध है वो सारे नष्ट हो जाएंगे यदि आप प्रसाद खाने से पहले उसको अर्पण करोगे। तो आगे भगवान ने कहा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते का मतलब होता है भोगते हैं, यानी कि जो खाते हैं, किस चीज को, ते वे तू यानी लेकिन, लेकिन जो वो खाते हैं, क्या खाते, क्या खाते हैं वो आगे बताएंगे, अभी तो बता रहे कि अघम पापा, अघम मतलब घोर पाप, पाप यानी पापी जन, ये वो लोग है ना वो घोर पापी जन होते हैं। कौन लोग? ये जो पसंती, पसंती मतलब भोजन बनाते हैं आत्म कारणार्थ। आत्म का मतलब होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, आत्म कारणार्थ मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भोजन बनाते हैं ना वो भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वगम पापा। अब यहाँ पर इस श्लोक में ना दो चीजें आई हैं, एक तो उष्णंती अश्नः है ना, यज्ञ शिष्टा अश्नः, अश्नः का मतलब होता है खाने वाले, ठीक है, जो भोगते हैं या खाते हैं। और दूसरी लाइन में आया भुंजते, भुंजते का मतलब भी होता है ईट करना, खाना मतलब खाना। अगर इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे तो दोनों का मतलब खाना ही होगा। अब यहाँ पर क्या, अश्न का मतलब होता है खाने वाले और भुंजते का मतलब होता है भोगने वाले। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो भगवान को अर्पित किया जाता है वो बन जाता है प्रसाद, और वो इस योग्य होता है कि हम खाए, और यदि उससे खाएंगे तो अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया मोच्यन्ते सर्व केल विषय, उससे तो समस्त अपराधों का नष्ट हो जाएगा। लेकिन वही खाना ही है, वही खाद्य पदार्थ है, यदि हम उसको खाते हैं कैसे, आत्म कारण केवल इंद्र तृप्ति के लिए उसको अर्पण नहीं करते हैं तो क्या होता है, भुंजते ते त्वगम पापा, भुंजते मतलब फिर भोगते हैं किसको, तो अघम पापा, अघम का मतलब यहाँ पर कहता है घोर पाप, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है उस जीव से जो प्रसाद अर्पण करके नहीं खाता। अब यहाँ पर यज्ञ शिष्टा लिखा हुआ ना, इसको हम थोड़ा क्लियर करेंगे कि यज्ञ का क्या मतलब है, कि वो कौन है जो आदि यज्ञ है, यानी यज्ञ किसके लिए किया जाए। ये भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था श्लोक नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 8 में अर्जुन ने पूछा था, आदि यज्ञ कथम गोत देहेस्मिन् मधुसूदन, कि हे मधुसूदन यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, पहले बताए यज्ञ का स्वामी कौन है। तो भगवान बोलते हैं उसके नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 4 में बोलते हैं, आदि यज्ञ अहमेवात्र, कि अहम एवात्र, एवात्र मतलब मैं ही हूँ निश्चय से, आदि यज्ञ कोई और नहीं है मैं ही हूँ, यानी यज्ञ का स्वामी मैं हूँ भगवान बोलते हैं। तो आज हमें बता रहे हैं यज्ञ शिष्टाश्ना संतो, यदि आपको मुच्छन्ते सर्वकिल विषय होना है, यदि समस्त अपराधों से मुक्त होना है तो आपको क्या करना है, यज्ञपति को प्रसाद खिलाना है। और यज्ञपति कौन है, भगवान ने कहा यज्ञ आदि यज्ञ अहमेवात्र, मैं ही आदि यज्ञ हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान को भोजन अर्पण करके खाते हैं वो समस्त अपराधों से मुक्त हो जाते हैं, और जो दूसरे भुंजते ते त्वगम पापा, वो घोर अपराध करते हैं जो कि केवल ये पसंत्यात्म कारण, जो अपने लिए अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भोजन पकाते हैं। अनुवाद देखिए, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्थात यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब भगवान ने एक निर्णय दे दिया कि अब देखो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की संपूर्णता बताते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने ये यज्ञ वाला टॉपिक कहाँ से स्टार्ट किया था, थोड़ा हम अगर इसको क्रम से देखेंगे ना तो हमें अच्छा से समझ में आएगा। हम श्लोक नंबर 8 को देखते हैं पहले। श्लोक नंबर 8 में भगवान ने क्या कहा, 8 में भगवान ने कहा, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धि कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ना करने से तो आप शरीर की यात्रा यानी शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते हो। यानी कि पहले भगवान ने बोला आपको क्या करना है, नियत कर्म अपना जरूर करना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आगे फौरन ही बताया कि नंबर 9 में कहा कि देखो आप कोई भी नियत कर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बंधन का कारण हो जाएगा। देखो अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, ठीक है। एक होता है कर्म कांड और दूसरा होता है कर्म योग। कर्म कांड या कर्म जब हम करते हैं तो वो बंधन का कारण बनता है। भले जोन सा भी कर्म आप करते हो, इवन कर्म का अगर कर्म मतलब जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप ना जॉब पे जाते हो, जैसे आप घर में कोई काम करो, जो भी आप कर रहे हो, किसी के साथ बात भी करते हो ना, तो वो भी आपका बंधन का कारण बनता है। किसी से प्रेम करो, किसी से द्वेष करो, किसी से राग करो, किसी वो सब बंधन का कारण बनता है। कर्म कोई भी बंधन का कारण बनेगा, ठीक है। लेकिन अब वो कर्म कांड, कुछ लोग कर्म करते हैं, खाली कर्म करते हैं, लेकिन कुछ लोग कर्म कांड करते हैं। कर्म कांड क्या होता है, जो वेदों में लिखा हुआ है उसको फॉलो करना, ठीक है। अब वेदों में क्या, याम इमाम पुष्पिताम वाच्यम, अब बहुत अलंकार लैंग्वेज लिखी हुई है। उसमें क्या होता है, यदि हम कर्म कांड करेंगे तो हम उच्च लोक को जाएंगे और वहां पर पुण्य क्षीण होने के बाद वापस नीचे जाएंगे, ठीक है। कर्म कांड मतलब अच्छे देवताओं की पूजा करो और किसी को ना खाना खिला, सो सेवा करो, जो भी करो जो भी करो। यदि वो ये सोच कर कर रहे हो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी बदली में मन में क्या है, अच्छा काम करने का रिजल्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, अच्छे कार्य करने का स्वर्ग और अच्छे लोग आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको वापिस आना पड़ेगा। ये होता है कर्म कांड, ठीक है। कर्म वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक इंद्रिय तृप्ति होती है। किसी कोई है ना देवताओं को खुश करने के लिए नहीं होता है, कोई शास्त्रों को अध्ययन करके या फिर वेदों को अध्ययन करके कोई काम नहीं करो, बस खाली मजा करो, वो तो डायरेक्ट से आपके जन्म मरण के बंधन का कारण बनेगा। फिर कर्म कांड करते हो यानी जो देवताओं वेदों में लिखा हुआ है उस हिसाब से यज्ञ करते हो, फिर यज्ञ करने के बाद आप ऊपर जाओगे, ऊपर से वापस नीचे आओगे, ठीक है। उसके बाद होता है कर्म योग, ठीक है। कर्म योग में क्या होता है, आप डायरेक्ट से सुप्रीम ट्रुथ के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हो और जो भी आप कर रहे हो उस कोई भी आपको रिजल्ट नहीं चाहिए, निष्काम कर्म सेवा करते हो केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये होता है निष्काम कर्म और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण 9 में कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र, यदि आप भगवान के साथ अपना संबंध निर्माण करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करोगे तो, यहाँ पर अनुवाद देखिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा लोकोयम कर्म बंधना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो अन्यथा कर्म के द्वारा भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए कहा अपने नियत कर्म करो। पहले भगवान ने कहा नियत कर्म करो, फौरन से भगवान ने सोचा ये नियत कर्म करना शुरू हो जाएगा फिर तो कर्म में बंधन में फंस जाएगा, और फिर बोला नहीं नहीं खाली नियत कर्म नहीं करो, नियत कर्म करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तदर्थम कर्म कौन थे मुक्त संग समाचर, फिर तुम बंधन में नहीं फंसोगे, बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में। उसके बाद भगवान कहते हैं नंबर 10 में सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वत्वम् एषवो तुष्ट कामनुक। अब ये यज्ञ जो आप हम करते ना वो किधर से आए, तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ में ही समस्त प्राणियों के स्वामियों ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा है और उनसे कहा कि तुम यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं उत्पन्न हो। यानी कि जब यज्ञ स्टार्ट हुआ तो देवताओं और मनुष्यों को ये ऑर्डर दिया गया था कि आप ये यज्ञ करने से सुखी रहो, यज्ञ करोगे तो आप सुखी हो जाओगे क्योंकि तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछ। अब इस संसार में रहने के लिए भी क्योंकि हमें हम प्रकृति से बहुत कुछ ले रहे हैं, तो यदि यज्ञ करते हैं तो एक तरह से हम प्रकृति का थैंक्स करते हैं। जैसे हमारे संसार में हम देखो, हम जो भी देखते हैं, हमें जो भी कुछ देखता है, जैसे अगर हम छोटा बच्चा होता है उनको भी हम यही संस्कार दिलाते हैं। कोई अगर उसको टॉफी भी देता है तो हम बदले में क्या बोलते हैं? थैंक यू, है ना। कोई भी चीज होती है तो उसको बोलते हैं कि आपका धन्यवाद। कोई अगर हमारी मेरी अपनी कॉपी गिर जाए जमीन पर और मुझे कोई उठा के देता है, या कोई भी चीज गिर जाती है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ? धन्यवाद, कि मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने इतना मेरे पर कृपा किया या इतनी मेरा सहायता की। तो फिर क्योंकि हमारी शरीर यात्रा निर्वाह करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है जो देवतागण हमें देते हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृतज्ञता को उनके सामने बखान करने के लिए हमें उनके लिए यज्ञ करना पड़ता है, और यज्ञ से वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर क्या होता है आगे देखिए, 11 में भगवान कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। कि शुरू में क्या करना है, अभी तक भगवान तक नहीं पहुंचे हैं, अभी स्टार्ट करें। कर्म कांड को स्टार्ट करते हुए भगवान बता रहे हैं कि पहले देवताओं को खुश करोगे तो देवता तुम्हें खुश करेंगे, फिर क्या होगा, परस्परम भावयंत श्रेय परम वापसता, फिर इससे क्या होगा, तुम परम श्रेय को, क्योंकि आपके शुभ कर्म विकसित होंगे, अपराधों का भाव कम हो जाएगा और आप शुद्ध सत्व में आओगे, इसलिए पहले देवताओं को प्रसन्न करो, फिर अब स्टेज ऊपर आएगा। फिर क्या होगा, भगवान कहते हैं 12 में, इष्टान भोगानि हरो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सह। अब क्योंकि देवता आपको बहुत सारी चीजें देते हैं ना, बहुत सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी करते हैं, तो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होते हैं और तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। यानी कि अब वो प्रसन्न होते हैं ना, क्योंकि अब देखो घर में भी होते हैं, मम्मी पापा हमारे लिए कोई चीज लेकर आते हैं और हम उनको, ऐसा होता है ना, एक पप्पा किसी घर में अगर एक पैकेट टॉफीज का लेकर आए तो अपने बेटे के लिए लेकर आए, कितने स्ट्रगल करके या कैसे भी करके अपने बच्चे के लिए लेकर आया, और बाप बहुत खुश होगा अगर उसमें से एक टॉफी निकाल कर बच्चे ने उसको खोल के पप्पा के मुंह में, पप्पा आ करो मैं आपको खिलाऊं, तो इतनी उसको प्रसन्नता होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, बच्चे के पास पैसे अपने नहीं थे, धन अपना नहीं था, वो खुद से तो लेकर भी नहीं आया, ये दिया उसके बाप ने, लेकिन उसी में से एक निकाल के जब अपने बाप को खिलाया तो उसकी प्रसन्नता का कोई छोर ना रहा, और वो बुला के बताएगा दूसरों को, देखो मेरा बच्चा कितना प्रेम करता है मुझसे, मेरे लिए मुझे कितना खिला रहा है। हालांकि वो वही दिया जो उसने दिया था, है ना। इसी तरह से देवता जो हमें देते हैं, अब वो उसके बाप ने दिया था, लेकिन आगे कहानी चलेगी तो ये इनडायरेक्ट, वो भी बाप भी तो भगवान ने दिया, और बाप को ये कमाने की शक्ति भी भगवान ने दी, तो वो उधर जाएगी। लेकिन अभी तक तो हम इसी स्टेज पर हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि देवताओं ने जो आपको जितनी भी सहूलतें, जितनी भी आवश्यकताएं प्रदान की है, तो उनको हमें जरूर भोग लगाना है, और इससे क्या होगा, तेर दत्ताना प्रदायाय भी। अगर हम वो वापिस से देवताओं को नहीं देते हैं, उनको अर्पित नहीं करते, तो ये यो भुंगते स्तेना एव सह, फिर आप अपराधी कहलाते हो। इसलिए यज्ञ करना है आपको देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और आज भगवान इन समस्त प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बता रहे हैं कि अगर आप चोर नहीं बनना चाहते हो तो आप कैसे जीवन व्यतीत करो, यज्ञ करने का क्या मतलब है, और हम यज्ञ कैसे अपने जीवन के हर एक क्षण को किस तरह से यज्ञ बना सकते हैं उसके विषय में आज भगवान बता रहे हमें। और भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुंजते ते तो धम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। कि अब तुम यज्ञ स्टार्ट करो अपने खाद्य पदार्थ से, क्योंकि आप संसार में और कोई कार्य करो या ना करो लेकिन खाओगे तो सही ना। मनुष्य जब तक जिएगा तब तक खाएगा, और खाने से ही आपके अपराध स्टार्ट हो जाते हैं, खाने से ही आप घोर पाप करते हो। अभी पहले हम इस श्लोक की दूसरी वाली लाइन को समझेंगे, उसके बाद पहले वाले। इसमें क्या लिखा, भुंजते ते त्वगम पापा। त्वगम का मतलब होता है घोर पाप, वो लोग तो घोर अपराध कर रहे हैं। ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने इंद्रिय को प्रसन्न करने के लिए अन्न बनाते हैं या खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 99% लोग खाते रहते हैं, और क्यों खाते हैं, केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना, कि मुझे अच्छा लगता है। घर में किसी के जाओ तो आधे से ज्यादा दिन जो लेडीज का गुजरता है किचन में, सिर्फ अभी ये बनाना है ब्रेकफास्ट में, ये बनाना है लंच में, ये बनाना है, उसके बाद हाई टी है, उसके बाद डिनर है, ये बनाना है, ये बनाना, ये बनाना, सारा दिन बनाते जाओ। ये मेरे पति को अच्छा लगता है इसलिए बना रही हूँ, ये मेरे बच्चे को अच्छा लगा इसलिए बना रही हूँ, ये मेरी सास को अच्छा लगा इसलिए बना रही हूँ, ये तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए बना रही हूँ। यदि ये भाव रख के हम बनाते हैं तो क्या होता है, भुंजते ते त्वगम पापा, फिर तो घोर अपराध हो रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना खा रहे हैं, और एक एक निवाले के साथ, एक एक कण के साथ अपराध हो रहे हैं। वास्तव में भक्तों, अगर सीधी बात बताऊं आपको, तो कुछ लोग कहते हैं ना ऐसे कि आप ना मनुष्य का पशु का मांस नहीं खाते हो, क्यों, क्योंकि इससे जीव हत्या होती है। जीव हत्या तो तब भी होती है जब आप ये वनस्पतियां एवं की सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह खाते हो, क्योंकि उसमें भी जीव होता है। बेशक ये बिल्कुल 100% सही बात बता रहे हैं कि अपराध उसमें भी होता है जब हम सब्जियां फ्रूट्स इत्यादि खाते हैं, उसमें भी अपराध होता है, उसमें भी प्राण होता है, फिर हम उसको तोड़ते हैं फिर खाते हैं। लेकिन ये अपराध ही होता है यदि हम ये सोच कर खाएं कि ये मैं खाऊंगा तो इससे मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी, ये मैं खाऊंगा तो इससे मेरा पेट भरेगा, ये मैं अपनी प्रसन्नता के लिए खा रहा हूँ, तो क्या है, भुंजते ते त्वगम पापा। ये बहुत बहुत अपराध है, ये पचन्ति आत्म कारणात्। अभी यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर पका रहे हो, पचन्ति आत्म मतलब पकाते हैं, तो यदि आप पका रहे हो तो इससे अपराध लगेगा। लेकिन अगर आप बाहर से रेडीमेड लेकर आते हो होटल से या कहीं से भी, तो उससे अपराध नहीं लगेगा कि मैंने तो पकाया ही नहीं, मैं तो सिर्फ लेकर। आप यदि इससे हमें देखो लॉजिक समझनी चाहिए भगवान के भाव को, कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। अगर अर्पण किए बगैर खाते हो तो आपको अपराध लगेगा, और अपराध का रिजल्ट क्या होता है, एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन, अपराध का रिजल्ट होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, बारंबार जन्म मृत्यु। तो यदि कोई मनुष्य और कार्य करना बंद भी कर दे तो भी खाएगा, और भगवान तो साफ साफ कहते हैं यदि तुम खाओगे तो भी तुम्हें अपराध लगेगा, तो फिर कृष्ण कैसे बचे इस अपराध से। उसका आंसर भगवान श्री कृष्ण देते हैं, यज्ञ शिष्टासना है संतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय। यदि आप यज्ञ में प्रसाद अर्पण करके खाते हो तो आप समस्त अपराधों से मुक्त हो जाओगे। यज्ञपति को यानी भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा आदि यज्ञ अहम मूत्र, तुम और किधर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल मुझे खिलाओ, जो कुछ आप खा रहे हो वो मुझे खिलाओ, उससे आप समस्त अपराधों से मुक्त हो जाओगे। ये सबसे बड़ा यज्ञ है वास्तव में, जब हम भगवान के लिए कुछ बनाते। वास्तव में ये उस समय से स्टार्ट होता है जब हम मार्केट से कुछ लेने जाते हैं, वैसे तो मार्केट में जाके हम क्या सोचते हैं कि मुझे आज ये घर में ये बना के खिलाना है, इसलिए मैं ये सब्जी ले रही हूँ या ये फ्रूट्स कितने अच्छे हैं इसलिए ले रही हूँ। ये यदि कॉन्शियसनेस रही कि मैं अपनी आत्म तृप्ति के लिए ये ले रही हूँ, वहीं से अपराध स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। परंतु अपराधों के कारण यहाँ पर हम आए हैं और हमें इन अपराधों को खत्म करना है। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें केवल ये सोचना है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर। तो जब भी कोई मार्केट में अच्छा सा फ्रूट्स दिखता है तो मैं लेकर जा रही हूँ ताकि मैं अपने गोपीनाथ को खिलाऊं, ये मैं लेकर जा रही हूँ ताकि मैं भगवान को भोग लगाऊं, और वहीं से चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है। अब कृष्ण भावना मीन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। पहले आप अपना समझ कर इंद्र तृप्ति के लिए खाते थे, अब ये कि मैं जो बना रही हूँ, जो घर में प्रसाद भी बनाते हैं तो ये सोच कर रहे हैं कि हमें अच्छा लगता है इसलिए बना रही हूँ, या मैं इसके लिए बना रही हूँ, इसके लिए मैं कृष्ण के लिए बना रही हूँ। हृदय से ये बात, ऐसे नहीं खाली मुंह से बोल दो, हृदय से ये बात हमें रियलाइज भी करनी है कि क्योंकि सब कुछ मुझे कृष्ण ने दिया है और मैं कृष्ण से बहुत प्यार करती हूँ, तो आज मैं उसके लिए ये बना रही हूँ, ये डिश बना रही हूँ, उसको खिलाऊंगी, उसको अच्छा लगेगा। तो इससे क्या होगा, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, आपके समस्त अपराध जो है वो उनसे आप मुक्त हो जाओगे, भावबंधन से मुक्त हो जाओगे और कृष्ण प्राप्ति सरल हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद देखी जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। कितना अच्छा नाम दिया है संत, और उनको क्या दिया है जो नहीं खाते हैं अघ, ऐसे है ना, भुंजते ते त्वघ, त्वघ कहते हैं अपराधी को, और अनघ, हम अक्सर अनघ पढ़ते ना भागवतम पढ़ा था, भगवान को अनघ कहते निरअपराध को और त्वघ कहते हैं घोर अपराधी को। लेकिन यहाँ पर श्री रूपा जी संत के विषय में बता रहे हैं कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, जो भगवान को अर्पण करके खाते हैं वो तो संत बन जाते हैं। और श्री रूपा जी बहुत ही सुंदर ब्रह्म संहिता के एक श्लोक को कोट करते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो संत हैं वो कृष्ण भावना भावित होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वे सदैव भागवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है। संत कैसे होते हैं, प्रेमंजन चरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ती। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते जो संतगण हैं वे सदैव संत प्रेमंजन चुरित भक्ति विलोचनेन, उनके हृदय के अंदर जो भक्ति के नेत्र हैं उन पे सदैव प्रेम का अंजन लगा रहता है और वे सदैव अपने हृदय के नेत्रों से भगवान का दर्शन करते रहते हैं। यानी संत श्री भगवान गोविंद यानी समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद यानी मुक्ति के दाता, या कृष्ण यानी सबको अपने ओर आकर्षण करने वाले भगवान के प्रगाढ़ प्रेम में सदैव निमग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। यहाँ पर बताया ना कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, ऐसे संत होते हैं जो कभी भी कोई चीज भगवान को अर्पित किए बगैर नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के लिए अत्यंत ही प्रेम होता है। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा, अब उनके अंदर और क्या क्या कार्य वो करते हैं, एक तो अर्पण करते हैं भगवान को, जो भी खाते पहले भगवान के लिए ये सोच करके मैं भगवान के लिए बना रहा, ये सोच करके आज मैं भगवान को ये खिलाऊंगा। तो इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे खाद्य पदार्थ के लिए भूखे हैं। ये वही मैंने अभी आपको बताया कि बाप प्रसन्न होता है जब उसका बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसी टॉफी में से उसको एक बाइट खिलाता है कि देखो पहले आप खाओ, नहीं तो पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, तो उसको कितना अच्छा लगता है। उसी तरह भगवान को बहुत अच्छा लगेगा यदि हम भगवान को, भगवान आगे बताते हैं 26 में, 9.26 में भगवान कहते हैं, बट पवित्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यहाँ पर देखो अश्नामी आया और हमारे पास क्या है अशिनः, ये एक ही है। अशिना का मतलब खाते हैं और अश्नामी का मतलब भगवान कहते हैं जो मुझे, मैं उसे ग्रहण करता हूँ, मैं उसे खाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो प्रसाद अर्पण किया जाता है उसको उशिना और अश्नामी कहा जाता है, लेकिन जो अर्पण नहीं किया जाता है उसको भुंजते कहते हैं, भोग रहा है, बस कुत्तों की तरह खा रहा है। जैसे बस कुत्ते के सामने जो भी डाल दिया वो ये नहीं सोचेगा कि मैं पहले अर्पण करूँ फिर खाऊं। और इसी तरह शास्त्र हमें बताते हैं कि भाई हमें पहले भगवान को यज्ञ शिष्टाचना संतो मुच्यंते ही सर्व खेल विषय। वास्तव में हमारे और जानवरों के अंदर चार चीजें कॉमन है जो जानवर भी कर रहे हैं और मनुष्य भी करते हैं, वो क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सेम है। लेकिन वो इन्हीं चार चीजों को मनुष्य जो भगवत भावनामृत में होता है, जो कृष्ण भावनामृत में होता है, वो इन चार चीजों को भगवान को समर्पित करता है। कैसे, पहला है आहार, और आहार के लिए भगवान ने साफ साफ बताया कि आपको मुझे प्रेम से अर्पित करना है, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, तो पहले भगवान को अर्पित करना है, तभी वो पवित्र हो जाता है और भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और उससे क्या होता है, मोक्षन्ते सर्व क्लेश। उसके बाद है आहार के बाद निद्रा, यानी कि निद्रा, अब निद्रा भी पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, उसको हम यज्ञ शिष्टा कैसे कर सकते हैं, अर्पण कैसे कर सकते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था श्लोक नंबर 69 में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि जिस प्रकार बड़े ये जो भौतिक लोग होते हैं देर देर तक सो रहे होते हैं, वो उनकी सुबह होती नहीं है, लेकिन उस समय जो मुनि होता है, जो आत्म संयमी होता है, उसके जागने का समय होता है, यानी निद्रा को कम करना। वास्तव में निद्रा के लिए भक्ति में कोई स्थान नहीं है। इसे चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे पता है, चैतन्य महाप्रभु रात को, रोजाना रात को संकीर्तन यज्ञ करते थे, बोलते निद्रा के लिए समय नहीं, समय व्यस्त है वास्तव में। और जो हमारे आचार्य गण हैं वो भी कोई एक घंटा कोई दो घंटे इस तरह से बस विश्राम करते थे, लेकिन हम क्योंकि अगर सोते नहीं है तो हमारी भक्ति अच्छी नहीं होती, तो फिर निद्रा को कम करना, इसीलिए क्या करना है, कम सोना है और सवेरे उठना है, बहुत ज्यादा जल्दी उठ जाना है और अपनी साधना को स्टार्ट करना है। तो यज्ञ के ये होता है निद्रा का यज्ञ कि हम उसको ज्यादा, जो उसमें से ज्यादा पार्ट जो है, जो देर तक सोने वाला है, वो भगवान को दे देते कि ये नहीं करना, बस थोड़ा सा सोऊंगा ताकि मैं सुबह सवेरे उठकर आपकी भक्ति कर सकूं। उसके बाद भय, भय के लिए हम घर बनाते हैं और जानवर लोग घर बनाते हैं उसमें खुद रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए स्थान नहीं होता। और मनुष्य के घर में सदैव भगवान के लिए स्थान होना चाहिए, भगवान का एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए जहाँ पर वो भगवान के अर्चा विग्रह रखे, भगवान के चित्र और इत्यादि सेवा करे भगवान की। तो ये भय, यानी प्रकृति के भय से बचकर एक ऐसी जगह का निर्माण करना जहाँ पर आप अपने भगवान के साथ अच्छे तरह से रह सको, भय। और मैथुन, मैथुन होता है काम, और भगवान श्री कृष्ण काम के विषय में बताते हैं 7.12 में, भगवान कहते हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। हे कुंती पुत्र, वह काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूँ। तो ये सारे चारों चीजें भगवान को यज्ञ में अर्पित करेंगे तो क्या होगा, मोच्यन्ते सर्व किल्बिषः, समस्त किल्बिष, समस्त अपराधों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से घर बनाते हैं और अपनी मर्जी से काम वासना की पूर्ति करते हैं, तो क्या होता है, भुंजते ते त्वगम पापा, इससे ढेर सारे अपराध लगते हैं। और यहाँ पर आगे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि और उसके साथ साथ भक्ति के अन्य साधन भी करने के लिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं नवदा भक्ति के विषय में, कि भक्ति के साधनों द्वारा यथा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं। ये सब यज्ञ है। यदि आप भगवान, अब देखो यज्ञ नहीं करते तो पापमय जीवन होता है, और ये जो श्रवण आप कर रहे हो ना वो सबसे बड़ा यज्ञ है, प्रथम भक्ति। फिर हम कीर्तन करते भगवान के पवित्र नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये यज्ञ है संकीर्तन महायज्ञ। हमने अभी पहले वाले श्लोक में, श्लोक नंबर 10 में पढ़ा था, यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधस। जो बहुत बहुत अक्कलमंद होंगे वो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करेंगे। तो संकीर्तन का, उसके बाद स्मरण, भगवान के भगवान को स्मरण करना कि भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे बिछड़ गया हूँ, मैं आपसे वापस मिलना चाहता, इस तरह से भगवान को याद करना। अर्चना आदि द्वारा यज्ञ करते हैं। अर्चना यानी भगवान की विग्रह पूजा करना। और जिससे भी संसार की संपूर्ण पापमय संगति के किलमश से दूर हो जाते हैं। ये तरीका बताया, क्योंकि यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा जीवन पापमय जीवन होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया, तय दत्ता न प्रदायो योगुं तेस्तेन एवं। अभी वो तो चोर होगा जो खुद खाए खा लेगा, भोग लेगा, लेकिन वापस से उसको रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि यज्ञ में यदि अर्पित नहीं करके ठूसोगे तो फिर भुंजते तेत्वगम पापा, तो बड़े बड़े अपराधी हो जाओगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक अत्यंत सुंदर बात बता रहे हैं कि अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। पाप तो भुंजते रे त्वगम पापा, वो क्या पाप खा रहे हैं, वो केवल पाप ही पाप खा रहे हैं जो केवल अपने लिए खा रहे हैं। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, इसको हमें सोचना है कि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति चोर है तथा पापी भी है, दोनों है, ठीक है, एक तो चोरी कर रहा है जो खुद ही खा लेते हैं, अपनों अपने मतलब अर्पण नहीं करते, वो क्या है, पापी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अर्पण नहीं किया तो वो पापी है। लेकिन चोर कैसे हैं, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है जो चोर है और पापी है। एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि हम अपनी मेहनत से, मतलब एक फैक्ट्री थी उसकी सिमट की, तो उसने बोला मैं अपनी मेहनत से सारे कारखाना ये चला रहा हूँ, फैक्ट्री चला रहा हूँ, और बहुत मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता हूँ, सारे जितने भी यहाँ पर वर्कर हैं उनको मैं सैलरी देता हूँ, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आप कह रहे हो कि चोर, मतलब चोर कैसे कह सकते हो, हम इससे जो कमा रहे हैं इतनी मेहनत से वो तो हमारी मेहनत की कमाई है, तो आप इसको चोर कैसे कह सकते हो। तो श्री प्रभुपाद जी ने उनको बताया था, बोला अच्छा आप सीमेंट की फैक्ट्री है आपकी, तो बोला हाँ, बोला सीमेंट कैसे बनाते हैं, तो बोला कारखाने में बनाते हैं, बोला कारखाने में सीमेंट बन रहा है लेकिन रॉ मटेरियल क्या होता है, तो बोला वो तो हम पर्वतों से लेकर आते हैं, इतनी मेहनत से पर्वतों को चीर के और वहां से हम लेकर आते हैं रॉक, वो नहीं हिल, वो पत्थर काट के उसमें भी सीमेंट बनाते हैं। तो श्री प्रभुपाद ने बोला अच्छा वो पर्वत क्या तुम्हारे बाप ने बनाया, तो वो देख रहा था श्री प्रभुपाद को, बोले नहीं पर्वत तो पहले से बना होता है, थोड़ा पहले से नहीं बना होता है, ये कृष्ण की मिल्कियत है, ये कृष्ण की प्रॉपर्टी है, आप कृष्ण की प्रॉपर्टी में से इतने इतना खुद कमा रहे हो, इतने वर्कर्स को दे रहे हो, और फिर वो भगवान को उसमें से कुछ भी भगवान का हिस्सा नहीं निकाल रहे हो, तो क्या आप चोर नहीं हो, तो आप कृष्ण की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो और बोल रहे चोर नहीं हो। कृष्ण वो जो तुम्हारे वर्कर सुबह से लेकर दोपहर तक काम करते हैं और वो सूर्य की रोशनी इतनी सारी ले रहे हैं, वो सब वो सूर्य का तुम्हारे बाप ने बनाया, नहीं ना, वो सूर्य कृष्ण की, वो भगवान से कृष्ण कहते हैं आगे कि चंद्रमा और सूर्य मेरी भगवान के नेत्र हैं, आगे हम पढ़ेंगे ना 11 चैप्टर में। और इसके अतिरिक्त वायु, जिस वायु में तुम और तुम्हारे सारे वर्कर सांस ले रहे हैं और जिसके कारण तुम्हारा जीना संभव हो गया है, वो वायु क्या तुमने बनाई, तुम्हारे बाप ने बनाई है, तो बोला नहीं ये तो मैंने नहीं बनाई है, तो बोला ये सब जिस चीज के कारण आप जी रहे हो या आपको जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो केवल और केवल उसका परम कारण जो है, सर्व कारण कारण कृष्ण है। तो यदि हम कृष्ण को अर्पित किए बगैर कोई भी चीज यूज करते हैं तो हम या तो चोर हैं और साथ में पापी हैं। चोर और पापी, तो भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे कि जो व्यक्ति चोर है तथा पापी दोनों ही है, बराबर किस तरह से सुखी रह सकता है।
एक तो चोर है तो पनिशमेंट उसके लिए अनिवार्य, ऊपर से और अपराधी, तो यानी कि अपराध का मतलब है डबल अपराध। अपराधी का मतलब होता है कि उसको और भी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, तो फिर वो कभी सुखी नहीं रह सकता, यह संभव नहीं है। अब यदि सुखी रहना है तो क्या करना होगा, अपने इस चोर होने को और पापी होने को दूर करना होगा। चोर है यानी कि अब भगवान की जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं पहले भगवान को समर्पित करनी है, और भगवान को अर्पित किए बगैर कोई चीज नहीं खाएंगे। यदि खाएंगे तो क्या होगा, भुंजते दे जगम पापा ये पसंद आत्म कारण, फिर तो पाप। और अगर हम भगवान को अर्पण कर देते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान के साथ सामने अपनी कृतज्ञता का बखान, भगवान बहुत कृपा है तुम्हारी, ये सब जो कुछ मेरे पास है वो केवल और केवल तुम्हारी कृपा है, ये भगवान के सामने व्यक्त करना हमें चोर होने से, हमें अपराधी होने से बचाता है। और श्री प्रभुपाद जी अंत में बहुत ही सुंदर बता रहे, अतः सभी प्रकार के से सुखी रहने के लिए चाहिए, सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। क्या कि सिर्फ और दूसरे यज्ञ भले वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि वो भगवान को पवित्र नाम का जप करते हैं और भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं तो समस्त सारे यज्ञ पूरे हो जाते हैं और वो समस्त अपराधों से छूट जाते हैं। यानी कि अभी देखो वापस से पढ़ो कि वो जो चोर है जो पापी है वो तो सुखी नहीं हो सकता, तो क्या करना है, अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे समझते हो कि इसको सुखी में देखना चाहता हूँ, या जिससे हम देखो अपने सब लोग प्रयत्न करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, माँ बाप को सुखी देखना चाहते हैं, कोई पति को सुखी देखना चाहता है, कोई पत्नी को सुखी देखना चाहता है, कोई मित्र को सुखी देखना चाहता है, कोई संतान को सुखी देखना चाहता है, लेकिन यदि वो चोर और पापी बने रहेंगे तो सुखी होना संभव नहीं है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इनको दो चीजें सिखा दो, जिस जिसके लिए तुम मर रहे हो कि ये सुखी हो जाए उसको ये दो चीजें सिखाओ, एक तो संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो संकीर्तन यज्ञ बताओ और दूसरा बताओ कि आपको जो भी खाना है पहले भगवान को अर्पित करना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद ने यहाँ पर निर्णय दिया है कि इसके अलावा तो सुख और शांति संभव ही नहीं है, भले आप संसार की समस्त सुविधाएं एक साथ क्यों ना एकत्रित कर दो, बड़े से बड़ा बंगला खरीद दो, बड़े से बड़ी गाड़ी हो और नौकर चाकर हो, कुछ भी हो आपके पास, अच्छे अच्छे ड्रेसेस हो, अच्छे अच्छे ज्वेलरीज हो, लेकिन जब तक आप अपने जीवन में कृष्ण को सम्मिलित नहीं करते हो तब तक सुखी होना संभव नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।